एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। एडमंड मॉरिस की जो मशहूर जीवनी त्रयी है थियोडोर रूजवेल्ट पर, आज हम उसी दुनिया में उतर रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने मॉरिस के इस विशाल काम से कुछ जरूरी हिस्से साझा किए हैं और आज हम उन्हीं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे।
जी बिल्कुल।
आज का हमारा लक्ष्य क्या है? थियोडोर रूजवेल्ट मतलब टीआर, उनकी जिंदगी की वो असाधारण कहानी, उनका इतना जबरदस्त असर कैसे पड़ा और मॉरिस का जो लेखन है वो इतना दिलचस्प क्यों है, है ना, इसे समझना।
हाँ,
खासकर उनके लिए जो कम वक्त में ज्यादा जानना चाहते हैं। और ये ध्यान रखना होगा कि मॉरिस का काम वाकई बहुत बड़ा है, 3 काफी मोटी किताबें हैं, तो हम आज इसका सार निकालने की कोशिश करेंगे।
हाँ, और देखिए, मॉरिस का काम कोई मामूली जीवनी नहीं है। इसे पुलित्ज़र पुरस्कार मिला है और टीआर पर इसे एक तरह से सबसे अहम दस्तावेज माना जाता है। ये सिर्फ तारीखें या घटनाएं नहीं गिनाता, बल्कि उनके मन, उनके व्यक्तित्व का बहुत गहरा विश्लेषण करता है।
अच्छा,
और एक चीज साफ करना जरूरी है, जैसा आपने कहा भी, ये 3 किताबों की सीरीज है।
द राइज ऑफ थियोडोर रूजवेल्ट, फिर थियोडोर रेक्स और कर्नल रूजवेल्ट।
वो कहीं स्रोत सामग्री में शायद द रूसोवेल्स का जिक्र आया था, वो थोड़ा भ्रम पैदा कर सकता है। मॉरिस का मुख्य काम टीआर पर यही त्रयी है।
समझ गई, तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही हैरतअंगेज विरोधाभास से। एक तरफ तो एक कमजोर सा दमे का मारा लड़का टीडी, और दूसरी तरफ वो मतलब प्रकृति की शक्ति जैसा व्यक्तित्व जो वो बाद में बने।
हाँ,
उनके पिता थियोडोर सीनियर का बहुत असर था उन पर। मॉरिस एक वाक्य का जिक्र करते हैं जब पिता ने उनसे कहा, देखो तुम्हारे पास दिमाग तो है लेकिन जिस्म नहीं, मैं तुम्हें औजार दे रहा हूं पर अपना शरीर बनाना तुम्हारा काम है। ये एक बच्चे के लिए कितनी बड़ी बात रही होगी।
बिल्कुल, और यही बात आप कह सकते हैं टीआर की जिंदगी का एक केंद्रीय मिशन बन गई। बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग, खूब कसरत करना, ये सब इस यकीन पर टिका था कि अपनी इच्छा शक्ति से, अपने इरादे से किसी भी मुश्किल हालात पर काबू पाया जा सकता है।
अच्छा,
मॉरिस दिखाते हैं कि यही सोच आगे चलकर उनकी वो मशहूर स्ट्रेनुअस लाइफ, यानी कठिन और मशक्कत भरी जिंदगी वाली फिलॉसफी की जड़ बनी। ये सिर्फ सेहत का मामला नहीं था, ये जीने का एक तरीका था। चुनौतियों से भागना नहीं, उनका सामना करना। महावर्ड यूनिवर्सिटी में भी उनका यही अंदाज था। बहुत तेज दिमाग, हमेशा दूसरों से आगे निकलने की होड़ और हर चीज को जान लेने की भूख। वहां भी उन्होंने बॉक्सिंग जारी रखी और अपनी पहली अहम किताब द नेवल वॉर ऑफ 1812 भी लिखी। मॉरिस उन्हें ऐसे दिखाते हैं जैसे वो लगातार खुद को बना रहे हों, गढ़ रहे हों।
लेकिन ये कहानी सिर्फ कामयाबियों की ही तो नहीं है। 14 फरवरी 1894, ये तारीख उनकी जिंदगी में एक भयानक तूफान लेकर आई।
हाँ, बहुत दुखद है।
मॉरिस बहुत मार्मिक ढंग से बताते हैं कि कैसे उसी दिन एक ही घर में उनकी पत्नी एलिस, जिन्होंने बस 2 दिन पहले बेटी को जन्म दिया था, और उनकी माँ मिटी, दोनों की मौत हो गई। टीआर ने अपनी डायरी में सिर्फ एक बड़ा सा एक्स बनाया और लिखा, मेरी जिंदगी से रोशनी चली गई है। ये पढ़कर तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
जी, और इस हादसे का असर बहुत गहरा था। मॉरिस इसे टीआर के जीवन का एक निर्णायक मोड़ मानते हैं। इस भयानक दुख से उभरने के लिए वो शहर की दुनिया छोड़कर डकोटा के उस वीरान, कठोर बैडलैंड्स इलाके में चले गए।
हाँ, बैडलैंड्स।
मॉरिस इस दौर को एक तरह की भट्टी या अग्नि परीक्षा कहते हैं। वहां का जो मुश्किल जीवन था, मवेशी पालना, शिकार करना, यहां तक कि कुछ अपराधियों का पीछा भी किया उन्होंने, इन सब अनुभवों ने उन्हें अंदर से और मजबूत बनाया। ज्यादा आत्मनिर्भर, ज्यादा जमीनी। ये वही शख्सियत थी जो बाद में अमेरिका की लोक कथाओं का हिस्सा बन गई। और यहीं से लौटकर उन्होंने अपनी बचपन की दोस्त एडिथ कैरो से शादी की, जिनसे उन्हें फिर एक स्थिरता मिली, एक बड़ा परिवार मिला। डकोटा की उस भट्टी से तप कर निकले टीआर पहले से ज्यादा मजबूत इरादों के साथ लौटे थे।
और फिर उनका राजनीतिक सफर, वो तो बहुत तेजी से आगे बढ़ा।
हाँ, बहुत तेजी से। सिविल सेवा आयुक्त बने, फिर न्यूयॉर्क शहर के पुलिस बोर्ड के अध्यक्ष बने, जहां उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ काफी हल्ला बोला।
अच्छा, पुलिस कमिश्नर।
जी, इसके बाद नौसेना के सहायक सचिव बने और वहां वो लगातार एक ताकतवर आधुनिक नौसेना बनाने पर जोर देते रहे। और यहीं से कहानी और दिलचस्प होती है, स्पैनिश अमेरिकी युद्ध।
हाँ, रफ राइडर्स।
बिल्कुल, मॉरिस इस हिस्से को तो जैसे किसी रोमांचक उपन्यास की तरह लिखते हैं। टीआर ने अपनी आरामदायक सरकारी नौकरी छोड़ दी और रफ राइडर्स नाम की एक वॉलंटियर कैवलरी रेजिमेंट खड़ी की, जिसमें हर तरह के लोग थे, अमीर घरों के लड़कों से लेकर काउबॉय तक।
कमाल है।
क्यूवा में कैटल हिल पर, जिसे अक्सर लोग सैन जुआन हिल समझ लेते हैं, उनके हमले का मॉरिस बहुत सजीव चित्रण करते हैं। उनका वो करिश्मा, उनकी हिम्मत, और हाँ, टीआर की ये कमाल की काबिलियत कि वो अपनी कहानी खुद कैसे गढ़ते थे और लोगों के सामने रखते थे।
मतलब मीडिया को साधना जानते थे वो।
हाँ, कह सकते हैं। मॉरिस दिखाते हैं कि टीआर को पता था कि खबरों में कैसे बने रहना है। इसी जंग ने उन्हें रातों रात नेशनल हीरो बना दिया, और इसी शोहरत के दम पर वो न्यूयॉर्क के गवर्नर बने, फिर उपराष्ट्रपति। हालांकि पार्टी के बड़े नेता तो उन्हें किनारे लगाना चाहते थे।
अच्छा, उपराष्ट्रपति बनाकर साइडलाइन करना चाह रहे थे।
हाँ, कुछ ऐसा ही। लेकिन फिर 1901 में राष्ट्रपति मैकिनले की हत्या हो गई और वो अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। जैसा कि एक निराश पार्टी नेता ने कहा भी था, अरे धत देरी की, अब वो काउबॉय व्हाइट हाउस में है।
और फिर शुरू हुआ उनका राष्ट्रपति काल, जिस पर मॉरिस की दूसरी किताब है, थियोडोर रेक्स। इसमें तो उनकी ऊर्जा साफ दिखती है, सत्ता का भरपूर इस्तेमाल किया उन्होंने।
एकदम, उन्होंने बड़े कॉरपोरेशनों के एकाधिकार को चुनौती दी, वो ट्रस्ट बस्टिंग वाला दौर। रूस और जापान के बीच लड़ाई रुकवाने में अहम भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला।
नोबेल शांति पुरस्कार, हाँ।
पनामा नहर जैसा मुश्किल प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया और पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत बड़े कदम उठाए।
ये पर्यावरण वाला पहलू बहुत अहम है उनका।
बिल्कुल, और यहाँ उनके उस बुनियादी फलसफे स्ट्रेनुअस लाइफ को समझना जरूरी है। ये सिर्फ व्यक्तिगत बात नहीं थी, ये उनकी नीतियों में भी झलकती थी। मॉरिस इसे उनके जोरदार राष्ट्रवाद से जोड़ते हैं, अमेरिका की श्रेष्ठता में उनके विश्वास से, और जो तथाकथित सभ्य देश थे उनकी जिम्मेदारी से। इसी से उनकी वो बिग स्टिक डिप्लोमेसी निकली।
बिग स्टिक मतलब बड़ी छड़ी।
हाँ, बोलो नरमी से, लेकिन अपनी बात मनवाने के लिए ताकत हमेशा तैयार रखो। उनका पर्यावरण संरक्षण भी बड़ा दिलचस्प था। वो सिर्फ प्रकृति प्रेमी नहीं थे, उनका नजरिया उपयोगितावादी था, मतलब यूटिलिटेरियन।
अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ?
मतलब ये कि प्राकृतिक संसाधनों को सिर्फ बचाकर रखना नहीं है, बल्कि उनका प्रबंधन ऐसे करना है कि वो लंबे समय तक आम लोगों के काम आते रहें। ये नहीं कि निजी कंपनियां सारा फायदा उठा लें या उन्हें हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। उन्होंने ही US फॉरेस्ट सर्विस की नींव रखी और करोड़ों एकड़ जमीन नेशनल पार्क और मॉन्यूमेंट्स के तौर पर संरक्षित की।
कमाल है। लेकिन मॉरिस ये भी देखते हैं कि इतनी ऊर्जा, इतना जुनून, ये आता कहाँ से था? क्या वजह थी इसके पीछे?
हाँ, मॉरिस इसके मनोवैज्ञानिक पहलुओं में भी जाते हैं। वो कुछ संभावनाएं जताते हैं। एक, शायद अपने पिता की छाया। गृह युद्ध के दौरान उनके पिता ने अपनी जगह लड़ने के लिए किसी और को पैसे दिए थे, तो क्या टीआर उस कथित शर्मिंदगी को मिटाना चाहते थे?
दिलचस्प है।
दूसरा, कमजोरी और नजाकत से एक तरह का डर। शायद उनके बीमार बचपन के खिलाफ एक विद्रोह था, मर्दानगी का एक जरूरत से ज्यादा प्रदर्शन। और तीसरा, हमेशा कुछ करते रहने की, सुर्खियों में रहने की, मतलब अखाड़े में बने रहने की एक अतृप्त प्यास।
हमेशा एक्शन में?
हाँ, हमेशा एक्शन में। और मुश्किलों का सामना करने का उनका तरीका, हमेशा सीधा मुकाबला। बचपन का दमा हो तो उसे कसरत से हराया, पत्नी और माँ की मौत का दुख आया तो बैडलैंड्स की कठोरता में चले गए।
सही।
राजनीतिक दुश्मन सामने आए तो उनसे निपटने के लिए प्रेस का बखूबी इस्तेमाल किया। वो उसे बुली पुलपिट कहते थे।
बुली पुलपिट?
हाँ, इसका मतलब था राष्ट्रपति पद का इस्तेमाल एक मंच की तरह करना, अपनी बात सीधे जनता तक पहुंचाने के लिए।
बिल्कुल, उनका मानना था कि मुश्किलें इंसान को घड़ती हैं, तोड़ती नहीं।
लेकिन चुनौतियां सिर्फ बाहरी नहीं थी, है ना? मॉरिस बताते हैं कि उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी के जो पुराने नेता थे, वो भी अक्सर उनके आड़े आते थे।
हाँ, वो रूढ़िवादी खेमा उनके कई प्रगतिशील विचारों से सहमत नहीं था। और मॉरिस कुछ विवादों को भी सामने लाते हैं जिन्हें निष्पक्ष रूप से देखना जरूरी है। जैसे वो ब्राउन्सविले अफेयर था।
हाँ, वो क्या था?
उसमें बिना पूरी जांच के अफ्रीकी अमेरिकी सैनिकों की पूरी बटालियन को अपमानजनक तरीके से बर्खास्त कर दिया गया था। मॉरिस इसे टीआर के रिकॉर्ड पर एक काला धब्बा मानते हैं, क्योंकि वो नस्ले नाइंसाफी का मामला था और टीआर ने सबूतों के बावजूद सैनिकों की बेगुनाई की दलीलों पर ध्यान नहीं दिया था।
ओह।
और फिर पनामा नहर क्षेत्र का अधिग्रहण, जिस पर उन्होंने खुद कहा था, मैंने नहर क्षेत्र ले लिया। इस पर भी सवाल उठे थे कि क्या ये गोलंबिया के साथ ज्यादती थी।
हाँ, ये पहलू भी जानना जरूरी है।
और मॉरिस उनकी कुछ बड़ी नाकामियों पर भी बात करते हैं। शायद सबसे बड़ी राजनीतिक नाकामी थी 1912 का वो बुल मूस अभियान।
हाँ, जब उन्होंने तीसरी पार्टी बना ली थी।
जी, जब उनकी अपनी पार्टी ने उन्हें दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाया तो उन्होंने अलग पार्टी, बुल मूस पार्टी, बनाकर चुनाव लड़ा। मॉरिस मानते हैं कि ये उसूलों की लड़ाई तो थी, लेकिन इसमें अहंकार का भी बड़ा हाथ था।
और नतीजा क्या हुआ?
नतीजा ये हुआ कि रिपब्लिकन वोट बट गए और डेमोक्रेट उम्मीदवार वुड्रो विल्सन आराम से जीत गए। इस हार के बाद मॉरिस दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने अमेज़न के उस खतरनाक रिवर ऑफ डाउट यानी संदेह की नदी के अभियान पर जाकर खुद को फिर से साबित करने की कोशिश की।
ओह, वो अमेज़न वाला अभियान वो तो बहुत खतरनाक था।
हाँ, मौत से खेलने जैसा था वो। वो बुरी तरह बीमार पड़े, बाल बाल बचे। मॉरिस इसे ऐसे देखते हैं जैसे वो जीत की तलाश में मौत को गले लगा रहे हों। और फिर पहला विश्व युद्ध, उसका दुख और उसमें उनके सबसे छोटे बेटे क्वेंटिन की मौत, इसने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था।
कितना दुखद अंत।
मॉरिस अपने अंतिम सालों में उन्हें एक टूटे हुए लेकिन फिर भी हारना मानने वाले इंसान के तौर पर ही पेश करते हैं।
तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? मॉरिस के मुताबिक टीआर की विरासत क्या है? आधुनिक अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर तो उनका असर साफ दिखता है।
हाँ बिल्कुल, बुली पुलपिट का इस्तेमाल, वो स्क्वायर डील यानी आम आदमी के लिए बराबरी और न्याय का सिद्धांत जो उनका घरेलू एजेंडा था, और केंद्र सरकार की ताकत का अभूतपूर्व विस्तार, ये सब उनकी देन है। और हाँ, अमेरिका को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाना, पनामा नहर, ग्रेट व्हाइट फ्लीट को दुनिया भर में भेजना, ये सब उसी का हिस्सा था।
और सांस्कृतिक असर, वो स्ट्रेंडवस लाइफ वाला विचार?
हाँ, उसका भी बहुत गहरा असर है। मेहनत, हिम्मत, चुनौती का सामना करने का जज्बा, ये अमरीकी सोच का हिस्सा बन गया। पर्यावरण संरक्षण में उनका योगदान तो खैर बेमिसाल है। 230 मिलियन एकड़ से ज्यादा जमीन बचाना, यूएस फॉरेस्ट सर्विस, इतने सारे नेशनल पार्क और स्मारक।
हाँ वो तो है।
और इंसानी स्तर पर देखें तो उनकी कहानी है खुद को गढ़ने की, मुश्किलों से लड़ने और जीतने की, और एक पारिवारिक विरासत भी छोड़ी जिसने उनके भतीजे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट FDR और भतीजी एलेनोर रूजवेल्ट को भी देश सेवा के लिए प्रेरित किया।
और खुद मॉरिस का लिखने का अंदाज, वो भी बहुत खास है ना? जैसा आपने शुरू में कहा था, ये सिर्फ तथ्यों का जमावड़ा नहीं है।
बिल्कुल नहीं, मॉरिस कहानी को बहुत विस्तार से, गहराई से, लगभग एक उपन्यास की तरह लिखते हैं। वो कमाल के किस्सों का इस्तेमाल करते हैं जिनसे थियोडोर रूजवेल्ट का पूरा व्यक्तित्व जैसे आंखों के सामने जिंदा उठता है। पढ़ते हुए लगता है आप वहीं पहुंच गए हैं।
हाँ ये बात तो है।
और उनका नजरिया भी साफ है। वो TR के लिए गहरा सम्मान रखते हैं, बल्कि एक तरह का विस्मय, श्रद्धा भाव है उनमें। वो उन्हें किसी कहानी के हीरो या शेक्सपियर के नाटक के पात्र जैसा महान और जटिल मानते हैं।
अच्छा,
इस नजरिए की अपनी ताकत है, जबरदस्त रिसर्च, लिखने की शैली, मनोवैज्ञानिक गहराई। लेकिन इसकी कुछ कमजोरियां भी हो सकती हैं, है ना? जैसे क्या लेखक की इतनी ज्यादा सहानुभूति कभी कभी थोड़ी संस्तुति जैसी लगने लगती है?
हाँ ये सवाल उठ सकता है।
और क्या एक महान व्यक्ति पर इतना ज्यादा ध्यान देने से उस दौर की जो बड़ी सामाजिक और आर्थिक ताकतें थी वो थोड़ी नजरअंदाज हो जाती हैं? ये भी सोचने वाली बात है।
सही कहा। मॉरिस TR के कुछ ऐसे यादगार कथन भी सामने लाते हैं जो उनके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं, जैसे वो उनकी मशहूर कहावत, धीरे बोलो और एक बड़ी छड़ी रखो।
तुम बहुत दूर जाओगे। हाँ क्लासिक है वो। और उनका वो मैन इन दी अरीना भाषण का अंश, असली श्रेय आलोचक को नहीं मिलता, श्रेय तो उस इंसान को जाता है जो सचमुच अखाड़े में है, जिसका चेहरा धूल, पसीने और खून से सना है।
वाह, ये पंक्तियां तो आज भी जोश भर देती हैं।
बिल्कुल। और मॉरिस जो किस्से सुनाते हैं वो इतिहास को एकदम यादगार बना देते हैं, जैसे 1912 में जब उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान गोली लगी थी।
हाँ वो वाला किस्सा।
सीने में गोली लगने के बावजूद उन्होंने पहले अपना भाषण पूरा किया, भीड़ से कहा एक बुल मूस को मारने के लिए इससे ज्यादा जोरदार गोली चाहिए, और फिर करीब 1.5 घंटे तक बोलते रहे।
अविश्वसनीय।
या फिर व्हाइट हाउस में बॉक्सिंग करते हुए उनकी एक आंख की रोशनी चली गई थी, लेकिन उन्होंने ये बात सालों तक छुपा कर रखी। ये किस्से सिर्फ रोमांचक नहीं है, ये TR के चरित्र के बारे में बताते हैं, उनका धीरज, उनकी हिम्मत और कभी कभी उनका वो रहस्यमयी अंदाज भी।
तो कुल मिलाकर एडमंड मॉरिस के इस जबरदस्त काम से थियोडोर रूजवेल्ट की जो तस्वीर उभरती है उसका सार क्या कहेंगे आप?
मैं कहूंगा कि वो प्रकृति की एक ताकत थे, जटिल विरोधाभासों से भरे हुए, अपनी जिद और अपनी इच्छा शक्ति से खुद को घड़ने वाले इंसान, जिन्होंने अमेरिका को बुनियादी तौर पर बदल दिया।
और हम आज उनसे क्या सीख सकते हैं?
कई सबक हैं। खुद को बनाने का सबक, जैसे उन्होंने अपनी सेहत और चरित्र को गढ़ा, मुश्किलों और चुनौतियों को गले लगाने का महत्व, वो स्ट्रेनुअस लाइफ वाला विचार, और सोच के साथ साथ कर्म करने की ताकत।
और नेतृत्व के लिहाज से?
नेतृत्व के नजरिए से देखें तो बुली पुलपिट का असरदार इस्तेमाल कैसे किया जाए, एक साफ नजरिया रखना क्यों जरूरी है और फैसले लेने की हिम्मत। और ये बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, चाहे वो राजनीति हो, पर्यावरण की चिंता हो या अच्छे नेतृत्व की परिभाषा हो। टीआर के जीवन और उनके समय की गूंज आज भी हमें सुनाई देती है।
चलिए इस बातचीत को एक सोचने पर मजबूर करने वाले विचार के साथ खत्म करते हैं। ये मॉरिस के चित्रण से ही निकलता है, पर हमने सीधे इस पर बात नहीं की। मॉरिस टीआर को लगभग हमेशा आगे बढ़ते हुए एक्शन में दिखाते हैं। एक ऐसा इंसान जो शायद आखिर तक शांत बैठकर सोचने या आत्ममंथन करने में लगभग असमर्थ था।
दिलचस्प नुक्ता है।
क्या होता अगर ये अखाड़े का योद्धा सिर्फ रोशनी में भागने के बजाय कभी कभी छाया पर, अपनी अंदरूनी कश्मकश पर विचार करने में थोड़ा और वक्त बिताता? कैसे उनकी जिंदगी या उनकी विरासत कुछ अलग होती? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे सोचा जा सकता है।
बिल्कुल, सोचने के लिए एक अच्छा सवाल है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।